प्रकट लीला। हम सभी भक्त धाम की यात्रा का दर्शन कर रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे लता पता पेड़ और ये पत्थर कंकर, ये सब दिव्य है, स्वर्ग से कोटि गुना श्रेष्ठ है। ये चिन्मय चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, यहाँ के प्रत्येक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार फल देने वाले है। और यहाँ के पत्थर हीरा माणिक से भी अति महिमा मंडित है, क्योंकि चिन्मय है, जड़ नहीं है। तो आप लोग कहोगे कि हमको तो ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई क्या फल फल भी नहीं लगा है, कैसे इच्छा पूरी करेगा आप लोग। तो हम लोग किच दृष्टि से देख रहे हैं, हम लोग चर्म चक्षु से देख रहे हैं, चमड़े की आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता। तो किन आंखों से होता है? गीता में भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान चक्षुष है ना, पश्यंती ज्ञान। लेकिन ब्रज का दर्शन आपको करना हो तो केवल ज्ञान चक्षु से भी नहीं होगा, प्रेम चक्षु लेना पड़ेगा। तो चर्म चक्षु की तो बात ही छोड़िए, ज्ञान चक्षु भी नहीं, यहां तो प्रेम राज्य है ये श्री जी का। तो केवल प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, जिनकी आंखों में भक्ति का अंजन है और हृदय में गुरु वैष्णव की कृपा से ठाकुर जी के प्रति और उनकी लीला स्थली और लीला धाम ग्रंथों और सद संतों के प्रति जिनकी अपार अकूट अखंड श्रद्धा है, ऐसे इस दिव्य लीला स्थली का दर्शन वास्तविक रूप में कर पाते हैं। तो आप सभी से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि यहाँ कुछ भी गंदा नहीं है, गंदे है केवल हम और हमारा शरीर, इसलिए हमें बाहर गंदा दिख रहा है, क्योंकि अंदर जो होता है वो बाहर दिखता है। लेकिन आप शास्त्र चक्षु से देखिए, संतों ने क्या कहा है, ग्रंथ में क्या लिखा है, हमें नहीं दिख रहा है अलग बात है, मोतियो है वो इन तो देखा ही नहीं, तो एनो अर्थ है हमें न हो आपने मोतियो एम आपने अहंकार नो अज्ञान नो जरा मोतियो है तरह सत्य देखा है। तो हम लोग भूल चुके हैं, अज्ञान में माया में वशीभूत होकर वास्तविक सत्य को हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें संत और शास्त्र की कृपा से प्रेम चक्षु लाना पड़ेगा, भक्ति श्रद्धा से धाम का दर्शन होगा। तो तीन चक्षु मैंने कहा ना, चर्म चक्षु नहीं चलेगा, ज्ञान चक्षु आधा चलेगा, लेकिन वास्तव में प्रेम चक्षु चाहिए। ओके, दूसरी बात, ये धाम की लीला अभी चल रही है लेकिन वो अप्रकट लीला है, चल रही है लेकिन प्रकट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं हो रही। जब भगवान 5000 वर्ष पहले नित्य यहाँ विहार कर रहे हैं तो उस समय सब ब्रजवासी सब देख रहे थे भगवान को, क्यों? क्योंकि वो प्रकट लीला थी। भगवान राधा कृष्ण आज भी है लेकिन आज अप्रकट है, जो जो श्रद्धा भक्ति और सिद्ध हो चुके हैं वे महात्मा देखते हैं आज भी। तो हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं वो प्राकृत दृष्टि से कर रहे हैं, हमारी आंखें जो है वो चमड़े की बनी हुई जड़ आंखें हैं, तो हमें प्रकृति अभी जो भौतिक दर्शन हो रहा है, लेकिन धाम तीनों गुणों से परे और चिन्मय भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान के नाम धाम लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं, सब सच्चिदानंद है। और हम लोग यहाँ प्रेम से साधु संतों के आदेश अनुसार शास्त्र अनुसार श्रद्धा भक्ति नियमों का पालन करेंगे तो हमें भी ये धाम वास्तविक स्वरूप में दिखाई दे सकता है। तो हमें प्रयास करना है, नियम फॉलो करना है, शुद्ध भक्ति करने का। तो यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं है, इस बात को समझिए। करोड़ों करोड़ों इंद्र और स्वर्गों से भी श्रेष्ठ यहाँ की रज है, पत्थर है, कोई भी एक पत्ता तील कुछ भी, सब यहाँ दिव्य है, क्योंकि ये ऋषि मुनि भी साधना कर रहे हैं ब्रज में पर्वत के रूप में या तो वृक्ष के रूप में, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य जीव ब्रज में आ ही नहीं सकता, ब्रज में देवता भी नहीं आ सकता तो जीव की क्या बात। ये तो केवल राधा रानी की कृपा पात्र ही, शुद्ध वैष्णव ही अलग अलग रूपों में कृष्ण की सेवा में ब्रज में प्रकट होते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इस जो मंडल में हम ठहरे हैं इसको वृषभानुपुर कहते हैं, क्या कहते हैं? वृषभानुपुर, क्योंकि राधा रानी के पिता का नाम क्या था? वृषभानु बाबा, और राधा रानी की मैया का नाम कीर्तिदा महारानी। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, हम गाते हैं ना जय जय राधे उसमें। तो वृषभानु बाबा का ये क्षेत्र है, हम आगे जाएंगे बिलासगढ़ श्री जी का मुख्य मंदिर वृषभानुगढ़, तो वहां पर मुख्य मंदिर आप में से कुछ भक्त पहले ही दिन गए थे, तो वो महल था राधा रानी का, वृषभानु बाबा का। तो वृषभानु बाबा का ये राज्य क्षेत्र है, इसलिए इसको वृषभानुपुर भी कहते हैं या बृहत्सानुपुर भी कहते हैं, और ऐसे बरसाना कहते हैं। तो वृषभानु बाबा बड़े थे, कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है? नंदगांव। आज हम वहां पर भी जाएंगे, नंदगांव पर। तो नंद बाबा भी ब्रज के राजा थे, वृषभानु बाबा भी इस क्षेत्र के राजा थे, दोनों राजा थे, लेकिन दोनों में बड़े कौन थे? वृषभानु बाबा क्यों बड़े थे? उनकी दाढ़ी बड़ी थी इसलिए, क्योंकि उनके पास 11 लाख गायें थी और नंद बाबा के पास कितनी लग गई है? 9 लाख। तो जिसके पास ज्यादा गैया हो वो ज्यादा बड़ा राजा माना जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में जिसके पास गैया ज्यादा, जिसके पास जमीन ज्यादा, वही बड़ा। गाय ही संपत्ति मानी जाती है पहले, यही आज क्या संपत्ति मानी जाती है? गांधी बाबू टकले वाले नोट है ना, लेकिन पहले गैया संपत्ति मानी जाती तो सोना ये तो वृषभानु बाबा 11 लाख गैया थी, तो इसलिए बड़े राजा थे। और दूसरी बात क्या थी बड़े राजा? क्योंकि वो राधा रानी के पिता थे। जय हो, जय जय श्री राधे। अरे एक बार कृपा कर दो, ब्रजवासी आपके हैं ये सब, और ये हमारे अभी पहली बार आए, बाद में कभी आएंगे नहीं। एक तो मुश्किल से लाए हैं 4-5 दिन पूरे साल में दिवाली में, और ये अपने स्वरूप में आ गए तो इनको भी काट सकते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं कहो, एक प्रभु जी थे हमारे साथ में, आपको भावनगर में भी कहा था, प्रभु जी इसको क्या हो गया प्रभु जी? हाँ, तो ऐसे ही लड़ रहे थे, बैठे थे, एक पंडा उसको कह रहा था पैसा दो पैसा दो, तो कहा दिया ना तुमको, जाओ तो पैसा दो, और तो कहा पैसा दो नहीं तो हम यहाँ के ब्रजवासी है। तो हमारे प्रभु जी कहते तुम ब्रजवासी है तो हम सौराष्ट्रवासी है, अभी बता देंगे। मैं गया उधर, बोले शांत रहो तो हमारा आरो जाना बंद हो जाएगा, ये कृष्ण को भी मारते हैं तो हम क्या चीज है? कृष्ण के सर पर चढ़ने वाले हैं ये लोग। ब्रजवासी सने मोरे सहज प्रीति, कृष्ण कहते हैं कि ब्रजवासी मेरे अपने हैं, ब्रजवासी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी करे उनका कृपा प्रसाद ही समझना चाहिए, उनसे ना लड़ना है ना झगड़ना है, ये बात भी आप सुन लीजिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि वो राधा रानी के पिता है, इसीलिए बड़े है, क्योंकि राधा रानी ब्रज की वृंदावनेश वरी है, और कृष्ण यहाँ के क्या है? नौकर है। क्या है? सर्वेंट। कृष्ण को यहाँ पे पूछता नहीं है, पूछता है सब राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी ही ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। कृष्ण तो राधा रानी के तलवे में चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते, हे राधे, हे वृषभानु दुलारी, कृपा करो हम पर, कहते रहते हैं। तो वृषभानु बाबा, कीर्तिदा महारानी, उनके घर में राधा रानी, कृष्ण की परम प्रिया आलादिनी शक्ति स्वरूपा, श्री जी अपनी ललिता विशाखा आदि सखी वृंदों के संग इन दिव्य पर्वतों में नित्य लीलाएं करती रहती है। हमारा भाग्य है कि हम आज यहाँ पर सुंदर भगवान जहाँ नित्य आते थे कृष्ण बलराम गोलोक नंदगांव से, और यहाँ पर अपनी गैया को लेकर और ग्वाल बाल मधुमंगल श्रीदाम आदि सखा साथ में थे। ब्रज की भाषा में बड़ा सुंदर रसिया लिखा है कि कैसे है, आपको बाद में देंगे, वो खाली एक लाइन याद करा था। हाँ, कीर्त आगे गायक चले गए उसके आगे क्या है? हाँ नहीं नहीं उसकी एक ही लाइन, वो आगे गाय चले गिरिधर की उसके पहले, उसके पहले हाँ, साकरी गनी बनी पर्वत की, दधिले चली कुवरी की रथ की, आगे चाय गाय चले गिरिधर की, कल में सब खास हुआ। तो यहाँ पर ये साकरी खली गली बनी हुई है, और श्री गिरिधर गोपाल अपने दाऊ महाराज के साथ यहाँ आते थे और अपनी गैया को चराते थे। तो अब मैं थोड़ा विशेष और बताऊंगा, आप लोग प्रेमी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, देखिए कृष्ण भगवान जो है वो स्वयं भगवान है, अवतारी है, जिन्होंने राम नरसिंह वराह आदि अवतार लिए। गीता में उन्होंने कहा भी है संभवामी युगे युगे, लेकिन कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, अवतार लेने वाले मूल है, आप समझ गए इस बात को। और राम अवतार में मर्यादा निभाई, कश्यप बन के मंदराचल को टांग लिए, नरसिंह बन के हिरण्यकशिप को फाड़ दिए, वराह बन के पृथ्वी को उद्धार किया, लेकिन कृष्ण लीला में जो किया वो कहीं और नहीं किया, क्योंकि कृष्ण लीला में जो रूप प्रकट किया वो न नरसिंह में था न राम में। कृष्ण लीला में जो बंसी बजाई न राम ने बजाई न नरसिंह, नरसिंह बेचारे क्या बजाएंगे, कर रहे थे, कोई उनके लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं गई तो कौन जाएगा। और कच्छप जी नृत्य थोड़ी करेंगे, कछुआ बने तो नाच, लेकिन ब्रज में तो भगवान नाचते हैं, और विशेष रूप में गोपियों के साथ रास किया, ये और कोई लीला में ये रस नहीं है। कृष्ण ब्रज में पूर्णतम प्रकाश किए हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण हमको इस ब्रज प्रेम भक्ति देने आए हैं। तो गोलोक विहारी ब्रजेंद्र नंदन साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ही शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रदान प्रकट करते हैं, जिसको अतरंगा या आलादिना या तो स्वरूप भूता शक्ति कहते हैं। गीता में वो कहते हैं कि मैं उसी योग माया के अंतर्गत कार्य करता हूँ, संभवामी आत्म माया अथवा योग माया समावृत, उसी का मूल रूप है श्री राधा रानी। तो राधा और कृष्ण दो नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। लीला आस्वादने धरे दुई रूप, चैतन्य चरितार्थ में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसिक शेखर। क्या नाम है? जो संपूर्ण रस का आस्वादन करना चाहते, पांच रस आप जानते हैं ना, शांत वात्सल्य दास्य साख्य माधुर्य। प्रभुपाद जी के ग्रंथ अगर आपने पढ़े हैं तो ये सारी बातें समझ में आएगी। एक ये भी बात सुन लीजिए, भावनगर जाइए या मुंबई जाइए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना मत भूलिए, नहीं तो भक्ति से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि भक्ति के सार तत्व को प्रभुपाद जी ने अपने छोटे छोटे ग्रंथों में डाला है, वही इस दिव्य ज्ञान को बता रहे हैं कि राधा रानी कृष्ण की अतरंगा अलादिनी शक्ति है, और उसी राधा रानी के काय व्यू अवतार इनकारनेशन है ये ललिता विशाखा आदि, और उसी के अवतार है ये ब्रज की गोपियां, और इस गोपियों का करोड़वा अंश है ये लक्ष्मी इत्यादि रुक्मणी इत्यादि, और उनका करोड़वा अंश है और शक्तियां प्रकट होती है। सब शक्ति जो है उसका मूल है राधा, इस बात को हमें समझना चाहिए, और उसकी बहिरंगा शक्ति वो है श्री माँ दुर्गा, जिसका इस भौतिक संसार में केवल शासन है। गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में उनका कोई चांस नहीं, क्योंकि है ही नहीं, वहां इस रूप में नहीं है, वहां वो शक्ति का कार्य केवल इस भौतिक जगत में है। तो जिनको कृष्ण को पाना है, जन्म मृत्यु से मुक्त होना है, उन्हें राधा रानी की अलादिनी शक्ति का आश्रय लेकर कृष्ण भजन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मुक्ति हो सकता और ना तो इस जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। तो राधा कृष्ण नित्य लीला बिहारी प्रिया प्रियतम युगल सरकार, उनकी अष्ट सखिया है ललिता विशाखार त्रिंगभद्रा इंदुलेखा सुदेवी रंगदेवी चित्रा चंपकलता, ये राधा रानी की अतरंगा शक्ति। सखी माने जानते हैं ना, सखी मतलब शू, बहनपणी। ओके, सखी मतलब बहनपणी, मतलब हूं खबर बहन जीवी, बहन जे मैंने कही है काय कही है काय वो कही, बहन जेटलो प्रेम जेनी अरे करिए काय एने हूं कहवाय बहनपणी। ओके, તમારે છે ને, હવે બેનપણીમાં પછી પાકી બેનપણી આવે, અમુક કાચી હોય, હું પાકી બેનપણી, આને નો કહેવાય પાકો ભાઈ પણ, કારણ કે ભાઈ કોઈ પાકો ભાઈ જ નહીં, પણ બેન, કારણ કે એ ક્યારે ગમે ત્યારે છેતરી જાય, પણ બેનપણી બહુ, કારણ કે સ્ત્રીઓના હૃદયમાં સ્વાભાવિક કરુણા દયા, કારણ કે માં બનવાનું છે ને આગળ જાય, તો કરુણાનું હૃદય ઠાકોરજીએ સ્વાભાવિક આપ્યું, આ પથ્થરોને નથી આપ્યું એટલું બધું, એના તમે પાણા મારી મારીને ઢાકી દે તો માઇન્ડ માઇન્ડ ઢીલા પડે થોડા, ગાંઠે નહીં છે, પણ સખી કહે છે અને બ્રજ ભાષામાં તો લલિતા વિશાખા અતરંગ સખી હૈ, ઓર ઉન સખીઓ કે નીચે જો સેવા કરતી હૈ ઉનકો મંજરી કહેતે, ક્યા કહેતે હૈ, જો રાધા જૈસે સુન લીજે, રાધા કૃષ્ણ ઝૂલા પર ઝૂલ રહે હૈ, તો લલિતા ઝૂલા રહી હૈ, વિશાખા ચામર ઢુલા રહી હૈ, તો ઝૂલા બનાયા और चामर दिया वो मंजरियों ने, रूप मंजरी कमल मंजरी, अर्थात हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आदि षट गोस्वामी ग्रंथ। तो सब सेवा की सामग्री उपकरण जो है वो मंजरियां लाती है, और सेवा ललिता विशाखा करती है, और सेव्य है राधा कृष्ण युगल सरकार, ये हमारी परंपरा है। तो हम मंजरी भाव में भजन करने की रीति चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के अनुगत्य में प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई है। तो राधा कृष्ण की निकुंज वृंदावन लीला में अगर प्रवेश पाना हो तो षट गोस्वामी के अनुगत्य में प्रभुपाद जी के इस दिव्य आंदोलन में जुड़े बिना हो नहीं सकता। चारों संप्रदायों में भी अभाव रह गया है, केवल ब्रह्म मध्व संप्रदाय का यह सौभाग्य रहा, कि साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य राधा रानी के हृदय और कलर को लेकर राधा कृष्ण एक होकर चैतन्य अवतार लिए और यहाँ पर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आए। तो ये ब्रज प्रेम रस जो ब्रजवासियों की संपत्ति है वो केवल चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हमें हम जैसे बद्ध जीवों को विषयी जीवों को भी आसानी से प्राप्त हो रही है, इसमें केवल प्रभुपाद जी और उनके वैष्णव शिष्यों की परम करुणा है। बोले एक बार श्रील प्रभुपाद की जय। अतः इनके विदाए हुए भक्ति मार्ग नियम पर चलेंगे तो समझ पाएंगे। आइए उस बात पर मूल से सखी। सखिया पांच प्रकार की होती है, सुनिए। एक होती है सखी, इसके ऊपर होती है नित्य सखी, उसके ऊपर होती है प्राण सखी, उसके ऊपर होती है प्रिय सखी और उसके ऊपर होती है परम प्रेष्ठा प्रिय सखी। ये गुह्य बात है, केवल उज्जवल नीलमणि ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है, इसमें नायक नायिका भेद से इन सखियों का वर्णन किया गया है। अलग अलग स्टेज होता है ना, बेनपणी में अलग अलग लेवल हो ना। हाँ, तो सबसे टॉप मोस्ट कौन है? परम प्रेष्ठा प्रिय सखी, और उसमें ललिता विशाखा आदि सब सखिया आती है। ये थोड़ी गुह्य ऊंची बातें हैं, लेकिन मेरा कहना आवश्यक है कि आप लोग कुछ तो समझे, प्रवेश करें कहां हम लोग हैं। तो इन सखियों के मंजरियों के वैष्णवों के पद चिन्हों पर महाजनों गतेन पंथा, तब हम इस ब्रज प्रेम भक्ति रस को पा सकते हैं। और उनके लिए हमें साधना करनी होगी, ये कोई सहज नहीं है। हाँ, भजन गाया रोवा मिंडिया आंसू डावा मिंडिया वड़ी बगाड़ उन बाद मिंडिया, ये वो बने नहीं। रात और दिन एक साथ हो नहीं सकते, जहां रवि वहां रात हो ही नहीं सके, है ना। प्रेम वहां काम होता ही नहीं। अगर मन में वासना है, कामना है भोग विलास की, तो प्रेम हो ही नहीं। एक साथ नहीं हो सकते ये सूर्य और रात। लेकिन जो ऐसा कर रहे हो केवल ड्रामा नाटक कर रहे हो। तो सहज या नहीं बनना है, ऐसे ही भाव आ गया राग आ गया, साधना करनी पड़ेगी, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी, इन लीला स्थलियों में आकर लीला सुनना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम है लेकिन श्रवण करके इसको उदित करना है। तो ये हमारी वास्तविक परंपरा है। आप आगे सुनिए राधा रानी और कृष्ण की मधुर पावन लीला, मानगढ़ में आगे भी होगी। अब मैं मूल बात पर आ रहा हूँ। आप लोग जिस पर्वत पर बैठे हैं, ये सब वाले सामने वाले, वो विष्णु पर्वत है, और हम लोग जिस पर्वत पर बैठे हैं ये ब्रह्म पर्वत है। पद्म पुराण में लिखा है विष्णु ब्रह्म पर्वतो उभयो, दोनों पर्वत के बीच में एक गली परी है जिसको सांकरी गली कहते हैं। तो पूर्व कृतयुग से सतयुग की बात है। पुरा कृता अंते ब्रह्मणा पार्थितो हरि, सतयुग के अंत में इस पूरे सर्ग विसर्ग सृष्टि के रचयिता विष्णु के नाभि कमल से निकलने वाले श्री ब्रह्मा जी, जिनको चार सिर है और चारों सिरों में चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे जगत गुरु आचार्य माने जाते हैं, ऐसे श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरणों में तपस्या किए, घोर तपस्या किए, और तप बुलाई था आप सृष्टि भागवत में सुने होंगे। तो बहुत तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु उनके सामने साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मैं कहां से आया, कमल कहां से आया, मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी भागवत में सृष्टि का वर्णन है, तो कमल पर जब आए तो बोले मेरा जन्म कहां से हुआ, तो देखे कमल है और तो कुछ है नहीं, तो कमल की डंडी होती है ना नाल, उसमें घुसे अंदर, बोले अंदर जाता हूं कितना है, तो करोड़ों वर्षों तक अंदर योग शक्ति से जाते गए, लेकिन एंड मिला तो फिर बाहर आए, जैसे हम लोग पानी में जाते हैं ना गुंगरा ही ऐसे अंदर हो गया उनका, बाहर आया दिख नहीं रहा है कुछ क्या है, किधर से जन्म हुआ। तब उनको शब्द सुनाई दिया तपा तपा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे सृष्टि रचयिता जिसने मुझे प्रकट किया है वो मुझे तपस्या करने को, तो तुरंत तप करने लगे। बोलो दिखाई नहीं दे रहे थे, दो बार बोला और करने लगे। हम लोग के गुरु सामने बोलते रहते, प्रार्थना करते तपा तपा, हम सोवो सोवो खाओ खाओ, उनको बेचारे को दिखाई भी नहीं, बोला तप करने लग गए, और एक तो दिन नहीं हजारों वर्षों तक तपस्या की। हम लोग के लिए तो एक घंटा भी माला दो माला भी बहुत हो जाता है, गिरिराज जी उठाने जैसा बल लगता है, 100 ग्राम की माला है कि नहीं, भारी पड़ जाता है, ये सब अज्ञान है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनके शरणों में क्षमा मांगते हुए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके और आपकी प्रिया श्री राधा के और आपके वैष्णव और आपके इन ग्वाल बाल गोपी वृंद के चरणार विंद की मुझे प्राप्ति हो, चरण रज रेणु मुझे चाहिए, और उसके लिए मुझे आपके वृंदावन धाम में एक पर्वत के स्थान दे दीजिए, पर्वत बना दीजिए, और मैं आपके इन चरणों की रज को लेता रहूं। तो ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना से भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वही ब्रह्मा जी अपने आप को पर्वत के रूप में बरसाना में स्थित किए हैं। भगवान की भक्तों की और भगवान की चरण रेणु उसे नित्य मिलती रहे। ब्रह्मा जी ये पर्वत बने हैं। आप नंदगांव जाएंगे, वहां नंदीश्वर भगवान शिव पर्वत बने हैं, और कल हम गोवर्धन गए थे जहां साक्षात कृष्ण पर्वत है। ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत बने हुए हैं। देखिए ब्रज की महिमा को जरा देखिए। तो ये ब्रह्मा जी के कितने सिर थे? चार। तो इस पर्वत के भी चार सिर है, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, वृषभानुगढ़, चार सिर। आगे हम जाएंगे इस गली से, जब नीचे उतरेंगे तो वो चिकसौली गांव है। कौन सा गांव है? चिकसौली गांव कृष्ण की, राधा रानी की प्रिय पृष्ठ सखी में आती है, चित्रा सखी, अष्ट सखियों में उनका गांव है। चर्चित गोप उनके पिताजी थे, तो वही चर्चिता माता उसी का ये गांव है चिकसौली। और वहां से हम थोड़ा सा राइट मारेंगे, 10 मिनट चलेंगे तो मानगढ़ आएगा, जहां राधा रानी मान करके ऊपर चली जाती थी। 300 सीढ़ियां है, आप चढ़ना चाहे तो चढ़ सकते हैं ऊपर से। ऐसे हम दानगढ़ होते हुए, सॉरी मानगढ़ होते हुए दानगढ़ जाएंगे। जो चढ़ नहीं सकते वो नीचे से जाएंगे, लेकिन आपको नंदगांव भी ले जाना, इसलिए मानगढ़ नहीं ले जाएंगे, सीधा नीचे से दानगढ़ ले जाएंगे। 300 माला आप चढ़ेंगे, 300 पगतिया, तो फिर नंदगांव नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। सांस चढ़ जाएगी, एक तो सांस साथ में है सबके चढ़ी हुई है, और सांस नहीं है तो ये सांस तो है। सांस बहुत खतरनाक है, चढ़ती रहती है, बहुओं को सांस लेने नहीं देती ये सांस। तो आप सांस है, वो भी सांस भी पहले बहू थी, लेकिन वो भूल जाती तो सांस चढ़ती रहती है हमें। तो हम ज्यादा आपको सांस नहीं चढ़ाएंगे, इसलिए नीचे से ले जाएंगे। तो विशेष रूप में नित्य यहाँ लीला होती रहती है, कृष्ण बलराम आते रहते हैं। यहाँ से निकलती है राधा रानी गोरस की मटकी लेकर, भगवान श्याम सुंदर यहाँ सखाओं के बीच छुपे रहे, जैसे आए जैसे लकुटी है ना अपने बाबा के, ऐसे लकुटी आड़ी कर देते थे। ए कहाँ जा रही हो? यहाँ का दान कर दे के जाओ। बोले किसका कर, किसका कैसा कर? आज के पहले तो यहाँ कोई नहीं था। अरे मधुमंगल बीच में क्यों नहीं था? ये हमारे कृष्ण है, नंद बाबा के लड़के है, उसको दान दे के जाना पड़ेगा। बोले ये कहाँ से आ गया? यहाँ की ब्रज रानी तो हम है, बाबा हमारे ब्रज के राजा तो वृषभानु है, हम कोई दान बान नहीं देगी। बड़ा प्रेम कलह होता था दोनों के बीच में, झगड़ा होता था, और बाद में ठाकुर जी अपनी लठियां मार के मटकी फोड़ देते थे, राधा रानी पूरा भीग जाती थी, सब गोपियों से माखन छीना, जपटी लूटा चोरी होता रहता था, और प्रेम का कलह होता रहता था मधुर मधुर। ये यही पावन लीला स्थली है। लेकिन ऐसी लीला नित्य, बात यह है कि राधा कृष्ण को देखना चाहती है, सखिया कृष्ण को देखना चाहती है, तो गोरत बेचत हरी मिले। मूल बात यह है कि एक दूसरे का प्रिया प्रियतम दर्शन करके प्रेम लीला रस को बरसा रहे थे, मान प्रेम प्रणय होता रहता था। मुख्य रूप से यहाँ भाद्र शुक्ला त्रयोदशी को एक सुंदर लीला होती है कृष्ण के स्मरण में। सखिया को रोज इस तरह मक्खन चुराना, मटकी फोड़ना, तंग आ गई गोपिया कि हमारी ये मटकी और सांस ननन डांटती रहती है। तो एक बार ब्रज की सखियों में राधा रानी के नीचे मेन सखी है ललिता। कौन है? ललिता। ललिता ने सबको बुलाया, मीटिंग किया कि इन कृष्ण को अभी मजा चखाना चाहिए, इन सखाओं को। तो पूरे ब्रजमंडल में मोबाइल किया, मैसेज SMM सिस्टम सबको, क्या बोले? कल सुबह कोई काम नहीं करना, सब आ जाओ विष्णु पर्वत ब्रह्म पर्वत पर बरसाना साकड़ी खोर में। तो ब्रज की करोड़ों गोपियां यहां पर जमा हो गई, और ललिता ने सबको मैसेज दिया कि छुप जाओ आसपास में, कृष्ण 8 बजे यहाँ आते, 8:30-9 बजे, उसके पहले छुप जाओ। आप लोग भी उसके पहले आ गए हैं, तो उसके पहले इधर छुप जाओ आसपास कहीं कहीं। और जब कृष्ण के सखा आए 15-20-50 सखा, उसको पकड़ के खूब पिटाई करनी है इस बार। तो सब सखिया इधर उधर पेड़ के अंदर, इस समय तो बहुत घना जंगल पेड़ था, तो वहां से फिर 8-10 गोपियां निकली। कृष्ण अरोज की तरह आकर इधर खड़े हो गए, जैसे लड़का बैठा है ना उधर लाला वहां पर, और जैसे राधा रानी सखिया निकली तो तुरंत आड़ा किया अपना लठिया, बोले कहां जा रही है? लाओ दान। तब विशाखा जी ने थोड़ा सा सीटी बजाया, इशारा किया, तो ब्रज झुंड की झुंड सखिया निकली और सब सखाओं को मार मार के पकड़ पकड़ के पेड़ के साथ बांध दिया, एक एक पेड़ के। किससे बांधा? रज्जू से नहीं, चोटी से। सखाओं की चोटियां बहुत बड़ी होती थी, चोटी से पीछे चोटी बांध दिया।
सब सखाओं को बांध दिया, और सखा लोग केवल धोती पहनते थे, ऊपर तो कुछ था नहीं, केवल लकड़ी साथ में होता था बस, तो बांध दिया। और कृष्ण को भी ललिता जी ने कहा पकड़ो, इसको भी पकड़ो, यही सब मूल चोर मेन सरदार यही है, सरदार को पहले मार, उसको भी पेड़ के साथ बांध दिया कृष्ण को। ललिता ने कहा इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, केवल बांधना मारना नहीं, इसका निकालो, ये पीताम्बर हर रोज ओढ़ता है ना, पीताम्बर निकाल के नीली चुनरी पहनाओ इसको, और चोली 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 समझते ना, पोल को पोल का कृष्ण को गुजरात ओके, और घाघरा पहना है इसको, कृष्ण को सखी बनाया, श्यामा सखी इधर ही, और कज्जल लगा दिया सब सखिया ने अपना, और पकड़ के राधा रानी मटकी रखो इसके ऊपर, और कृष्ण के ऊपर मटकी रखी, तब राधा रानी आई, क्या है क्या करते थे रोज, धड़ाम से एक मटकी पर मारा तो पूरा गोरस से ठाकुर जी का बिना पैसा दिए अभिषेक हो गया। आप लोग तो 1500 देकर करे थे ना, 500 दे भागन वगैरह में, तो बम्बई वाले तो 15,000 देकर करते, यहाँ तो फ्री में हो गया उनका अभिषेक, पूरा दही से नहला दिया, और ऐसे ही अभी रोने दो इसको, अभी मजा के खाए, बोले कल से आओगे इधर, पैरों में गिर रहे ठाकुर जी, नहीं आएंगे बाबा, क्षमा कर दो, गलती हो गया, यहाँ आने की बात छोड़े देखेंगे भी नहीं बरसाना की। लेकिन ये उनको छूटना था, राधा रानी जानती थी कि ये स्वभाव कभी सुधरता, चाहे दान यात्रा करो या कुछ भी करो, ऐसे कैसे ही, क्योंकि ठाकुर जी के अंश है ना, वो नहीं सुधरते तो ये थोड़ी सुधरेंगे, लेकिन हम लोग सुधरे हुए हैं, बिगड़ गए हैं, मूल स्वभाव में आ जाइए, कृष्ण की लीला सुनेंगे तो हमारे मूल स्वरूप, लोटो है ना पित्तल नो, ये हारो जो पण कहना, कोई उठके नहीं तो काट खाए जाए, हम थोड़ो मांगे नहीं जरूर, पीताम्बरी आ रहा ना, हाँ ये पीताम्बरी चल रहा है अभी आप लोग, तो अंदर तो आप अच्छे ही है, लेकिन बाहर से थोड़ा काट लगीजिए, माया नो काट, अज्ञान नो काट, है ना, काट काटवानो से कृष्ण कथा दी, तो भगवान ने क्षमा मांगा फिर छोड़ा, लेकिन दूसरे दिन फिर वही के वही। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी प्रेम लीलाएं हुई है इस क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं। मैं आपको 15-20-25 मिनट आधा घंटा कथा इसीलिए कहा क्योंकि ऐसे पावन स्थानों पर जहाँ नित्य लीला होती वहाँ बैठना कीर्तन करना सुनना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, जब तब तीर्थ दान योग कर्म जो भी है इसके समान कुछ नहीं है। ये हमारा भाग्य समझते हुए सभी भक्तों को प्रेम से आनंद से सेवा भाव में, और यहाँ से जाइए तो एक 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 ध्यान रखिए, यात्रा पूरी करते ही यात्रा में ही दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमें शुद्ध वैष्णव बनना है ना, ऐसे के ऐसे कटाई गेलो लोटो नहीं रेवन, है ना, शुद्ध पवित्र ऐसा जीवन जीना है कि हमसे हमारे परिवार वाले बच्चे और पूरा समाज सीखे कि नहीं भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा आदर्श पवित्र जीवन, 16 माला जप, 4 नियमों का कड़ाई से पालन, यथाशक्ति वैष्णव मंदिर सेवा करते हुए अपना कर्म करिए। राधा रानी श्री जी निश्चित आप उनकी भक्ति करते हैं तो आपको सब सुख सब आनंद प्रेम प्रदान करेगी। एक भक्त ने ब्रज में सड़ा सुंदर गाया है कि तू अपना काम किए जा वो अपना काम करेगी, तुम्हारा काम है राधे कृष्ण भजता जा, उनका काम है तुम्हारा पालन पोषण, यदि आप कृष्ण के नाम पर तो कृष्ण आपके काम पर, आप कृष्ण का नाम लिए सब काम कृष्ण कर, नरसिंह मेहता नाम लेते काम उसका कृष्ण कर, सखूबाई नाम लेती थी काम कौन करता था, आप कृष्ण का नाम जपिए आपका काम कौन करेगा, नो नाम ले वो टूटो कर लो, कोई उपाय नहीं, अगर नहीं नाम लेना तो खुद क्या करे, चिंता उपाधि मर, तो आनंद करने के लिए दृढ़ संकल्प बनना पड़ेगा भक्तों के, नहीं हम हमारी बैड हैबिट्स खराब आदत को छोड़ेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, चाहे जिए मरे कुछ भी हो जाए वैष्णवों से प्रेम मैत्री और सेवा रखेंगे, और जिनको कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं है, जिनका जीवन पवित्र और ज्ञानमय नहीं है, ऐसे कुसंगियों को छोड़िए, चाहे वो हमारे कुछ भी हो या कितना भी हमें संसारी लाभ देते हो, क्योंकि अंततः आत्मा 40-50 साल 60 साल के लिए शरीर मिला है, उसमें भी आप लोगों का तो 70-50 तो गया, 40-30-22-40-35-50-71 पंदर वही है क्या, आमना भूवा मन खावा मन गाम नहीं करो, अभी अवसर मिला है उसको, चूंकि एक एक क्षण हमारे लिए बड़ा कीमती है, राम नाम की संपत्ति हमें इकट्ठी कर ली नहीं, एक ब्रज में बड़ा सुंदर सवैया है, नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, हमें तो केवल राम नाम की संपत्ति कमाई से, कारण की हाची संपत्ति ही हारे आवश्यक, बीजी संपत्ति हमें हमारे कमावानी नहीं, राम नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, बीजी कोई संपत्ति मारे हवे नहीं ज्योति, और छोड़ अटारी अटा जग के हम को कुटिया ब्रज माही बहानी बचानी, दुनिया ना महल खजाना छोड़ी ए लाला दो मिनट शांति रखो। तो ब्रज में एक छोटी सी कुटिया बना के राधे कृष्ण का मधुकरिका के भजन करना है। सिंपल वैरागी सादा जीवन, उच्च विचार हमें करना है। तो कह रहे हैं कि ब्रजवास हमें कब मिले, ऐसी आशंका करते हुए कहते हैं कि अटारी अटा जग के महल छोड़ के पलंग गाड़ी सुख को, हम बिस्तर छोटा मिले या ना मिले, ब्रज की रज मिले बस, ब्रज में ही रहना है। खाने पीने को भले कुछ न मिले, लेकिन वैष्णव के मुख से हरी कथा मिलती रहे बस, इसके आगे कुछ नहीं। तूक मिले रसिको के सदा, और प्यास लगे तो पीवन को जमुना जल पानी, पीने के लिए जमुना जल थोड़ा पी लेंगे, वैष्णव से कथा सुनते रहेंगे, वो सारे जग को खिलाता है, हमको भी खिलाएगा, कोई चिंता नहीं। हमको किसी की परवाह नहीं, क्योंकि अपनी ठकुरायन राधिका। अरे जब राधा रानी के हो चुके हैं, चाकर बन गए हैं, तो कृष्ण जिनके चरणों में गिरते हैं, और राधा रानी श्री जी की करुणा कृपा कटाक्ष की एक कटाक्ष भी प्राप्त हो गया है, तो जीवन धन्याति धन्य हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचना है तो राधा रानी की कृपा चरणारविंद के आश्रित होकर ही पहुंचा जाता है, और इन दोनों राधा कृष्ण तक पहुंचना है तो ललिता विशाखा की कृपा से, और ललिता विशाखा तक पहुंचना है तो मंजरियों की कृपा से। प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध ब्रज प्रेम भक्ति का सीधा रास्ता बताया है, आप लोग इस पर चलते रहिए, पालन करिए, जीवन में भक्ति करिए, कृष्ण आपको जरूर मिलेंगे, देखने स्वयं लेने आएंगे। क्योंकि गीता में उन्होंने कहा है, भवामी माम चिरात पार्थम मृत्यु संसार सागरात, 12वां अध्याय 7वां श्लोक, भगवान कहते कि मैं लेने आऊंगा तुमको, चिंता क्यों कर रहे हैं, और नहीं आएंगे तो राजा रानी भेजेगी, जाओ वो भावनगर वाला आया था सांकड़ी खोर में बैठा था उसको ले जाओ, वो नहीं भूलते, हम भूल जाते। भगवान तो सर्वज्ञ शिरोमणि, वेदा हम समतीतानि, गीता में कहते कि भूतकाल में जो भी हुआ मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में वही तो शक्ति दे रहे, उस शक्ति का हम गलत उपयोग करते हैं संसार की सेवा में, लेकिन मूल तो वही है। तो इसीलिए हम सबको इन बातों को लक्ष्य करिए, यहाँ पर आधा पौना घंटा बैठिए, इस बैठे हैं, लीला सुने हैं, इन सारे दोनों पर्वत को, इन लीला को चित्त में स्मरण रखिए, और ठाकुर जी का दर्शन ऐसे करिए कि आंखों से रस्ते हृदय में भरिए। कल गोकुल गए थे ना, तो बीच में थे ना, ए लाली ए, अभी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो बलराम जी बड़े थे इस तरफ, नंद यशोदा बीच में, लाला था, है कि नहीं। अब वो दर्शन किया है तो एक बार किया है तो एक साल के बाद भी आंख बंद करो वही दिखाई देना चाहिए। कैमरा में होता है ना जैसे सिस्टम, आंखों के रास्ते मन भर लेते हैं, और रोल होता है ना मन में, उसमें कैप ऐसे ही दर्शन करिए, ऐसे नहीं ऐसे गया गया घूमने आ गया, देखिए इस झांकी को क्या था कैसे था, और उसको एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए हृदय। आप भावनगर में रहे चाहे गुजरात में रहे, अपने काम करते हुए भी ब्रजवास कर सकते हैं, जब आप लीला स्थलियों को मन में याद करेंगे तो नित्य आपका ब्रजवास हो जाएगा। तो इस तरह पावन पवित्र लीला स्थान पर हुई, साकरी खोर है ये हमारे पंडा जी बाबा जी है, और भी है यहाँ पर, ठाकुर जी ने स्वयं दान लिया था दिया था कुछ सखिया, देखो ऐसे ही है, तो आपको यथाशक्ति जो भी यहाँ दान करना चाहिए। अभी समय नहीं बाबा, कल उस बार बुलाया था ना, मैं आपको वही बात बताया ना जो बताया मैं आपको, ओके। तो जो भी है यहाँ, जो आप देख रहे हैं ये पंडा ये है महाराज जी को दे, और जो यथाशक्ति देकर ठाकुर जी भी यहाँ दान दिए, और एक दान रखिए शांति से, एक एक चलिएगा, नहीं तो 3 दिन दूसरी परिक्रमा अभी बाकी है, थोड़ा सा पैर में मोचक आ गई ना तो राधे राधे हो जाएगा। तो ये तो सखियों का ब्रजवासियों का क्षेत्र है, क्योंकि